स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तू ही दाता विश्व
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और विशेष करके हम धन्यवादित हैं प्रभु हमारे हर एक श्रोता भाई बहन के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा हर एक से बोले और बातचीत करें, उनकी सहायता करें, ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन को समझकर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान में हैं, तनाव में हैं, दबाव में हैं, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी शांति दें, ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है पिछले अध्ययन में कि यूहन्ना ने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को हाथ में एक छोटी पुस्तक, पृथ्वी का पट्टा, और हाथ में लिए हुए उसे देखा। उसने दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऊंचे शब्द से पुकारा। उसके पुकारते ही गर्जन जैसे 7 शब्द सुनाई दिए। यह प्रभु यीशु के अनुमोदन के शब्द थे जिन्हें लिखने के लिए यूहन्ना को मना किया गया है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इसका अर्थ है कि गर्जन से निकलने वाले शब्द यूहन्ना समझ सकता था। अनुमोदन एक अभिकथन है। यूहन्ना शास्त्री था और वह अपने दर्शनों को लिखता जा रहा था, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 पद में देखते हैं। उसने उन 7 गर्जनों से निकली बातें लिखना आरंभ किया तो उसे लिखने से मना कर दिया गया। यह पुस्तक प्रकाशन की पुस्तक है, तो फिर इन बातों को छिपाने के लिए क्यों कहा गया? संपूर्ण पुस्तक में यही एक बात है जिसे गुप्त रखने का आदेश दिया गया है। पुस्तक के अंत में परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि उसने मनुष्य से कुछ नहीं छिपाया है, सब कुछ स्पष्ट बता दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 10 पद में यूहन्ना लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। परंतु इन 7 गर्जनों की बात लिखने से उसे मना किया गया। यह एक रोचक बात है। मेरे प्रियो, यदि यह स्वर्गदूत प्रभु यीशु होता तो यूहन्ना उसे दंडवत करता, जैसा उसने पहले अध्याय में महिमामय प्रभु यीशु को देखकर किया था। यूहन्ना ने उसे दंडवत नहीं किया, क्योंकि वह स्वर्गदूत है। इन 7 गर्जनों के शब्दों की कल्पना में नाना प्रकार की बातें की गई हैं। कुछ लोग इन्हें धर्म युद्ध कहते हैं, तो कुछ इन्हें लूथर के धर्म सुधार के विरुद्ध पोप का दंड कहते हैं। किसी ने उन्हें धर्म सुधार स्वीकार करने वाले 7 देश कहा है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा था कि वह उन्हें लिखे नहीं, अर्थात उसे मना किया गया। वे आज भी हमारे लिए भेद की बात है। यदि हम प्रयास करके कुछ सोचे भी तो हम आगे चलकर मूर्ख ही बनेंगे। क्यों ना हम इसे ज्यों का त्यों रहने दें और इससे शिक्षा ग्रहण करें। यद्यपि इस पुस्तक में प्रभु यीशु का प्रकाशन है, परमेश्वर ने अनेक बातें हमसे छिपा कर रखी हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे लिखा हुआ है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। यह स्वर्गदूत स्पष्ट करता है कि वह प्रभु यीशु नहीं है, क्योंकि वह अनंत सृजनहार के नाम से शपथ खाता है। लिखा है, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और अनंत सृजनहार की शपथ खाई। यदि वह प्रभु यीशु होता तो अपने शपथ खाता, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा। जी हाँ, परमेश्वर किसी की भी शपथ नहीं खा सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। स्वर्गदूत ने परमेश्वर की शपथ खाई, क्योंकि वह परमेश्वर नहीं है, अतः वह प्रभु यीशु भी नहीं है। प्रभु यीशु अनंत परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 58 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रभु यीशु सृजनहार है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और तब कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वह स्वर्गदूत प्रभु यीशु की शपथ खाता है जो स्वर्ग में है, और प्रभु यीशु का दूत होने के कारण उसी के लिए अधिकार दर्शाता है। आगे लिखा है, अब तो और देर ना होगी। यह पृथ्वी पर परमेश्वर के भक्तों के लिए आनंद का समाचार है कि अब प्रभु यीशु का आगमन निकट है, क्योंकि ये भक्त जन सोच रहे हैं कि वे कब तक क्लेश में रहेंगे। यह जैतून पर्वत पर कहे गए प्रभु यीशु के वचनों की पुष्टि है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद में लिखा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। स्वर्गदूत चुने हुओं से कह रहा है, चिंता मत करो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वह उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि उन पर मुहर लगाई गई है, वे महाक्लेश में बचे रहेंगे। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय के 10 पद में शहीदों की प्रार्थना का उत्तर है और प्रभु की प्रार्थना की पूर्ति है। लिखा है, तेरा राज्य आए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 10 पद में। मेरे प्रियो, इस समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के राज्य के आगमन की चर्चा करती है। न तो मैं और न ही पृथ्वी पर कोई मनुष्य जानता है कि प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है या नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यह सब तब होता है जब सातवां स्वर्गदूत तुरही फूंकने की तैयारी कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर महाक्लेश का अंत होगा। इस समय परमेश्वर का गुप्त मनोरथ प्रकट होगा। इस भेद के अनेक पक्ष प्रकट किए जा चुके हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से हर एक से महान है और उन सब का सारांश है। इसराइल जाति, दंड, कष्ट, अन्याय, परमेश्वर का चुप रहना और आने वाले राज्य आदि के बारे में कुछ भेद की बात है। मेरे प्रियो, मुख्य समस्या तो यह है, परमेश्वर ने बुराई को क्यों अनुमति दी और उसे इतने समय तक क्यों सहन किया? क्या आप जानना चाहते हैं? मैं मनुष्यों के उत्तर तो जानता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया है। एक दिन वह इस प्रश्न का उत्तर देगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर मेरे पास में नहीं है, परंतु मैं परेशान तब होता हूं जब मैं देखता हूं कि कुछ भाइयों के पास सब उत्तर हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब उत्तर हों, और धर्मशास्त्र का यह अंश प्रकट करता है कि कुछ बातों को हम नहीं जानते हैं क्योंकि उन पर मुहर लगी है। अभी परमेश्वर के पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। उसकी उपस्थिति में आने के बाद हमें उन बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, मेरे पास तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं है, परंतु एक मनुष्य है जिसके पास सब उत्तर है। मेरे पास मेरे अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं है, परंतु मैं अपना हाथ उसके हाथ में रख देता हूं और वह मुझसे कहता है, मेरे बच्चे, अंधकार में मेरे साथ चल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जब प्रकाश में आ जाएंगे तब तो समझेगा। मैं आपको भी यही कहता हूं कि अपना हाथ अपने सृजनहार और तारनहार के हाथ में दे दें। वह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है, वही आपकी सहायता करेगा। हम आगे देखते हैं, यूहन्ना उस छोटी पुस्तक को खाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी हर एक गतिविधि का संचालन प्रभु यीशु के हाथ में है, अतः यह आदेश प्रभु का ही है, वही सर्वे सर्वा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे महान उद्धारकर्ता की महिमा को प्रकट करती है। वह संपूर्ण पृथ्वी का न्यायी है और हम उसे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्रदान की है तथा उसे वह नाम दिया जो सब नामों में सबसे ऊंचा है। यदि यह वाणी प्रभु यीशु की नहीं है तो उसने किसी स्वर्गदूत को आदेश दिया होगा कि वह स्वर्ग से यह बात कहे। मेरे प्रियो, यूहन्ना स्पष्टता आत्मा में पृथ्वी पर लौट आया है क्योंकि यह छोटी पुस्तक जो पहले पिता परमेश्वर के हाथ में थी अब यूहन्ना को दी जा रही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा हुआ है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मेरे प्रियो, यूहन्ना उस महान नाटक में जो हमारे समक्ष खेला जा रहा है सहभागी हो जाता है। उससे एक अनोखा काम करने को कहा गया जिसका अर्थ अति विशिष्ट है। वह स्वर्गदूत के निर्देशन पर उस पुस्तक को खा लेता है। जिसका परिणाम कड़वाहट और मिठास मिश्रित है। उस पुस्तक को खाने का अर्थ है विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। यह परमेश्वर के वचन ही की शिक्षा है। यर्मिया की पुस्तक 15 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। यर्मिया वचन को आत्मसात करने की तुलना उसे खाने से करता है। यहेजकेल ने भी ऐसा ही किया था। यहेजकेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब इसराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। उसे वह मीठी लगी। परमेश्वर का वचन विश्वासी के लिए ऐसा ही मीठा होता है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय के 24 पद में लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। परमेश्वर के वचन की महिमा करने वाले भजन 119 में पद 103 के इसी तथ्य को स्पष्ट करता है। कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना द्वारा परमेश्वर के वचन का यह भाग दंड से संबंधित था। वह मीठा लगा क्योंकि भविष्य मीठा था। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 17 पद में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां पर लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। उसके कहने का अर्थ था, हम मित्र हैं और मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यह जानना मन को चैन प्रदान करता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। परंतु जब आपको यह पता चले कि परमेश्वर दंड देगा तो वह कड़वा लगता है। यूहन्ना ने बड़ी जिज्ञासा से परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, परंतु जब उसे यह पता चला कि और भी दंड दिया जाएगा तो उसकी आत्मा में पीड़ा उठी और उसके दिल को दुख पहुंचा। वचन उसके मुंह में मीठा लगा, परंतु पेट में जाने के बाद कड़वा हो गया। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के इस अंश को और संसार पर आने वाले दंड को पढ़कर प्रसन्न होते हैं, तो हमें परमेश्वर के मन को समझने के लिए बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना और परमेश्वर के मनोरथ को जानना कि वह क्या करना चाहता है मधुर लगता है। परंतु यह देखना कि प्रभु यीशु का इनकार करने वाले संसार पर दंड आने वाला है तो हम आनंद नहीं मना सकते। भविष्यवाणी कड़वी हो जाती है। इसमें एक और व्यवहारिकता है। अनेक जन बड़े जोश के साथ भविष्यवाणी पढ़ते हैं, परंतु जब वे देखते हैं कि यह उनके जीवन में लागू होती है और उनसे कुछ मांगती है, तब वे रुचि नहीं लेते हैं, अर्थात खो जाते हैं। वचन उन्हें कड़वा लगने लगता है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं, मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सुनना नहीं चाहता हूं, मुझे भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगती है, वह डरावनी है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि उसका उद्देश्य यही है, परंतु आपके मुंह में उसे मीठी लगना है। दुर्भाग्य से बहुत लोग भविष्य को जानने की जिज्ञासा से भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, परंतु वे देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं है जो पवित्र जीवन जीने की अपेक्षा भविष्यवाणी के अध्ययन में सहायता करे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, और जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। भविष्यवाणियों का अध्ययन करके अशुद्ध जीवन जिए तो विषमता उत्पन्न होती है। आज भविष्यवाणी की व्याख्या में इतनी अधिक विषमता का कारण है कि आज के अध्ययन करने वालों के मन में परमेश्वर का वचन प्रवेश नहीं कर पाता है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य मसीही जीवन की अपेक्षा भविष्यवाणी में रुचि रखता है। मेरे प्रियो, मेरे सेवाकाल के आरंभ में मेरे गुरु ने मुझसे पूछा कि मेरी सेवा कैसी चल रही है, तो मैंने उनसे कहा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में तो आराधनालय भरा रहता है, परंतु रोमियों की पत्री के अध्ययन में आराधनालय खाली हो जाता है। मैं उनकी बात कभी नहीं भूलता। आप देखेंगे कि अधिकांश विश्वासी यीशु मसीह की अपेक्षा ख्रिस्त विरोधी में ज्यादा रुचि रखते हैं। मैं आगे चल करके देखना चाहता हूं कि उनका कहना शत प्रतिशत सही होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप ख्रिस्त विरोधी अर्थात शैतान की ओर खोजबीन ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन को जानें, उसकी सत्यता को जानें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप स्वतंत्र किए जाएं? आप परमेश्वर के पास आइए, किसी मनुष्य के पास नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको सत्य बातें दे सकता है। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको अधिकाई से आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप उसकी संगति में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। हाथों को जोड़